इस सत्र में स्वागत है। आज हमारे पास ना पर्यावरण की हालत पर कुछ अहम नोट्स हैं। इनमें प्रदूषण, धरती के बढ़ते तापमान और हाँ हमारी जीवन शैली, इन सब पर बात है। कुछ समाधान भी बताए गए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हालात कुछ ठीक नहीं है, पर एक सवाल है जो इन नोट्स को पढ़कर मन में आता है कि भाई सुधार इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इन नोट्स में, देखते हैं ये क्या कहते हैं। प्रकृति का अपना एक तालमेल होता है ना, पर लगता है वो बुरी तरह गड़बड़ा गया है। शुरुआत में ही ये नोट्स कई तरह के प्रदूषण गिनाते हैं, पानी, हवा।
हाँ, हवा में भी वो PM2.5 वाले खतरनाक बारीक कण,
बिल्कुल, जो सीधे फेफड़ों में जाते हैं। फिर जमीन का प्रदूषण, शोर,
और वो शहरों की लाइट, रात में नींद तक मुश्किल हो गई है।
सही कहा। और कुछ आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं, जैसे पिछले सिर्फ 50 सालों में 90% बड़ी मछलियां गायब।
90%? ओहो।
और जंगली जानवरों की आबादी भी आधी रह गई है।
ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। और इन सब में जो मुझे सबसे ज्यादा चिंताजनक लगा वो है पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस जिसे कहते हैं।
अच्छा, ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी?
हाँ, देखिए, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो धरती के चारों तरफ एक कंबल की तरह काम कर रही हैं। गर्मी अंदर तो आ रही है पर पूरी बाहर नहीं जा पा रही, वो फंस रही है। करीब 1.66 वाट प्रति वर्ग मीटर गर्मी ज्यादा रुक रही है।
1.66 वाट प्रति वर्ग मीटर, ये सुनने में शायद कम लगे।
हाँ, सुनने में, लेकिन नोट्स में इसकी तुलना की है। रोजाना धरती पर 11 लाख से ज्यादा हिरोशिमा बॉम्बों जितनी ऊर्जा।
क्या, 11 लाख हिरोशिमा बॉम्ब रोज?
सोचिए जरा। और इसी बढ़ती गर्मी से ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है,
और मौसम का पूरा मिजाज बिगड़ रहा है, कहीं सूखा कहीं बाढ़।
बिल्कुल, सब कुछ गड़बड़ा गया है, जैसे रसोई बंद हो और अंदर गर्मी बढ़ती ही जा रही हो।
ये 11 लाख बम वाला आंकड़ा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और नोट्स इसका बड़ा कारण हमारी आज की जीवन शैली को बता रहे हैं। उन्होंने एक भारी सा शब्द इस्तेमाल किया है, शोषण, दोहन और दुरुपयोग आधारित भोगवादी जीवन शैली।
भारी तो है, पर मतलब शायद सीधा है कि हम चीजों को बस इस्तेमाल करने और फेंकने के आदि हो गए हैं। प्रकृति से लेना तो जानते हैं
पर उसे सहेजना, उसका ध्यान रखना वो भूल गए हैं। धरती के प्रति वो जुड़ाव, वो सम्मान कम हो गया है।
हाँ, बिल्कुल यही बात। और इससे जुड़ी एक और कड़वी सच्चाई है, वो है संसाधनों का भयानक असमान बंटवारा।
अच्छा, वो कैसे?
नोट्स बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग, उनके पास दुनिया की करीब आधी दौलत है।
आधी? सिर्फ 1% के पास?
हाँ। और दूसरी तरफ जो सबसे गरीब आधी आबादी है ना, उसके पास 1% से भी कम।
ये तो बहुत बड़ा अंतर है।
भारत में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ सबसे अमीर 1% के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है।
40%?
और मजे की बात ये कि यही अमीर तबका कार्बन उत्सर्जन के लिए भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मतलब एक अरबपति का कार्बन फुटप्रिंट एक आम इंसान से लाखों गुना ज्यादा होता है।
तो तस्वीर अब थोड़ी और साफ हो रही है। एक तरफ जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता, जो करीब 85% ऊर्जा देता है। दूसरी तरफ हमारी कार्बन गहन आदतें, जैसे खाने की बर्बादी, जरूरत से ज्यादा गाड़ियां,
और ये अमीरी गरीबी की गहरी खाई।
लेकिन नोट्स एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी इशारा करते हैं।
वो क्या?
कि समाधान लागू करने की जो ताकत है वो उन्हीं करीब 10% लोगों के पास है जो समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं।
ओ, ये तो बड़ी विडंबना है,
है ना? जबकि बाकी 99% लोग या तो इस संकट की गंभीरता से अनजान है, या फिर तर्क के बजाय अपनी पुरानी मान्यताओं, परंपराओं से ज्यादा चलते हैं।
सही कहा, ये एक बहुत बड़ी गांठ है, इसे सुलझाना आसान नहीं। अच्छा, तो अगर समस्या ये सब है तो नोट्स हल क्या बताते हैं, कुछ रास्ते सुझाए हैं?
हाँ, कुछ रास्ते बताए हैं। पहला तो ये कि बदलाव की शुरुआत ऊपर से हो।
मतलब
उन लोगों से जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं और जो फैसले लेते हैं वो शीर्ष 10%, क्योंकि उनके कदम ज्यादा असर डालेंगे।
ये बात तो सही लगती है। और
दूसरा, कुछ तकनीकी उपाय भी सोचे जा रहे हैं, जैसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, SRM,
ये क्या चीज है?
मतलब सूरज की कुछ गर्मी को धरती तक पहुंचने से रोकना, समझिए कि एक तरह की तकनीकी ढाल बनाने जैसा।
तकनीकी ढाल सुनने में तो दिलचस्प है, पर इसके अपने खतरे भी हो सकते हैं।
हाँ वो तो है, इस पर काफी बहस चल रही है। और तीसरा उपाय?
तीसरा और शायद सबसे बुनियादी उपाय है हमारी जीवन शैली में बड़ा बदलाव।
अच्छा, किस तरह का बदलाव?
वो शोषण वाली सोच छोड़कर पोषण, संतुलन और चीजों के सही इस्तेमाल वाली सोच अपनाना।
मतलब यूज एंड थ्रो से हटकर केयर एंड कंजर्व की तरफ।
बिल्कुल, और नोट्स में एक सीधी चेतावनी भी दी गई है।
चेतावनी कैसी?
लिखा है, समझदारी से मान जाएं या मजबूरी लाचारी से मना लिए जाएंगे।
ओहो, मतलब या तो हम खुद सुधर जाएं,
वरना हालात हमें सुधार देंगे। प्रकृति का अपना तरीका है संतुलन बनाने का।
तो कुल मिलाके ये नोट्स पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन की एक काफी गंभीर तस्वीर खींचते हैं। और इसकी जड़ें हमारी ऊर्जा जरूरतें, हमारी जीवन शैली और समाज की बनावट में हैं।
हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
पर क्या सिर्फ ये भारी बदलाव जैसे तकनीक या नीतियाँ काफी होंगे? नोट्स में सोच बदलने की बात भी है शायद।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नोट्स सिर्फ बाहरी समाधानों पर नहीं रुकते, वो अंतःकरण यानी हमारी अंदरूनी समझ, हमारे जमीर की बात करते हैं।
अंतःकरण
और कर्म फल की भी बात करते हैं, यानी हमारे कामों के नतीजे
कि हम जो करेंगे वैसा भरेंगे।
कर्म फल, इसे कर्तव्य यानी जिम्मेदारी की भावना से भी जोड़ा गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब तक हमारी सोच, हमारी नियत, हमारा अंतःकरण नहीं बदलेगा, तब तक क्या सच में बड़े बदलाव आ पाएंगे?
सही कहा, शायद सिर्फ नियम या तकनीक से काम न चले, अंदर से बदलाव जरूरी है।
बिल्कुल,
अंतःकरण और कर्मफल ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक सोच में बदलाव पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को किस तरह प्रभावित कर सकता है।
हाँ, ये एक गहरा विचार है
और शायद इसी पर आगे और सोचने की जरूरत है।